वेद है स्वर में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से योना नबी की पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ भी मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है परमेश्वर की दया। तो आइए श्रोताओ, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से योना नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर ने योना को नीनवे शहर में जाकर उनके विरुद्ध प्रचार करने के लिए कहा, परंतु वह नीनवे शहर को छोड़कर किसी अन्य स्थान में अर्थात तर्शीस की ओर भागा जा रहा है। तो इस अध्ययन के क्रम में हम सब आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया है। ये इसलिए नहीं कि हम अच्छे और भले लोग हैं, परंतु इसलिए कि आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके वचन में, आपके डर भय में, आपके ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। इस समय हम धन्यवादित हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपने आत्मिक ज्ञान दें, बुद्धि और समझ दें, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते हैं तो हमारे जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को बहुतायत से आशीषित करें, योना के जीवन से हम सबों को सिखाएं, ताकि हम अपने जीवन में आत्मिक रीति से आगे बढ़ने पाएं, आपके वचन में और अधिक मजबूत होने पाएं। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो किसी न किसी रूप में निराश हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं। प्रभु जी, आप उनकी सुधि ले, उनकी सहायता करें ताकि प्रत्येक जीवन आप में आनंदित होने पाए। इस समय अपने वचन पर आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार योना निनवे शहर को छोड़ करके तर्शीश की ओर भागा जा रहा है। तो आइए इसी क्रम में हम सब आगे बढ़ेंगे और योना नबी की पुस्तक एक अध्याय उसके 8 पद को पढ़ेंगे। योना एक अध्याय उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उधम क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। मेरे मित्रों, योना और नाविकों के मध्य बातचीत तो हुई, परंतु उसने परमेश्वर की गवाही दी। परमेश्वर की इच्छा से बाहर का व्यक्ति परमेश्वर का गवाह कभी नहीं हो सकता। हमारे लिए यह स्मरण रखने योग्य एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है जो योना ने उन्हें नहीं बताया। उस पर ध्यान दीजिए, उन्होंने उससे पूछा, तू करता क्या है। उसने किसी को नहीं बताया कि वह एक भविष्यद्वक्ता है। उसने उनके पूछने पर भी नहीं बताया कि वह गतेपर का इसराइली है। उसने अपने देश इसराइल का नाम भी नहीं बताया। तू किस जाति का है, उसने उन्हें नहीं बताया कि वह इसराइली है जिन्हें जीवित परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त है। उसने अपना उद्देश्य भी नहीं बताया कि उसे निनवे नगर में परमेश्वर ने अपने योजना के अंतर्गत भेजा है। उसने नहीं बताया क्यों, क्योंकि वह पूर्ण रूप से परमेश्वर की योजना से अर्थात योजना के बाहर चल रहा था और यही कारण था कि वह कुछ भी उन्हें बताना नहीं चाहता था। तब हम पढ़ते हैं योना एक अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। ध्यान दीजिए, उसने कहा मैं इब्री हूं। इब्री जाति एक परमेश्वर की उपासना के लिए जानी जाती थी। सब जानते थे कि वे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तब वह कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। अर्थात जो समुद्र उनके समक्ष था और प्रचंड आंधी के प्रकोप में था, उसके सृजनहार परमेश्वर को वह जानता था। मेरे विचार में वे नाविक इसराइल को जानते थे, परंतु उन्हें जीवित एवं सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। और मैं ऐसा भी सोचता हूं कि शायद उन्होंने ऐसे दास को नहीं देखा था। योना एक अध्याय के 10 पद में आगे लिखा है, तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। यद्यपि योना निश्चिंत होकर के सो रहा था, उसका विवेक उसे परेशान कर रहा था। योना ने उन्हें बताया कि वह छुट्टी मनाने के लिए जा रहा है, जबकि उसे निनवे नगर को जाना था। उसकी यह यात्रा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। उसने उन्हें अधिक जानकारी नहीं दी। तब लिखा है, तूने यह क्या किया है। मेरे प्रियो, यह एक उत्तम प्रश्न है और अविश्वासियों द्वारा प्रायः विश्वासियों से पूछा जाता है। मेरी भेंट एक व्यवसायिक से हुई और मैंने उसे अपनी आराधना में आमंत्रित किया जहां पर हम लोग सेवकाई करते थे। वह आराधनालय में आया तो उसने मुझसे पूछा कि क्या एक मनुष्य जिसका नाम यह है वह हमारा सदस्य है? मैंने कहा हाँ, वह हमारे ही कलीसिया का सदस्य है, वरन कलीसिया का पदाधिकारी भी है। उसे आश्चर्य से कहना पड़ा, मैं उसे वर्षों से जानता हूं, वह मेरे साथ व्यापारिक संबंध रखता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मसीही जन है। यदि मैं विश्वासी होता तो उसका सा व्यवहार कभी ना रखता। अतः यह एक लज्जाजनक प्रश्न है कि अविश्वासी किसी विश्वासी से पूछे, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे प्रियो, मैं आपको और एक घटना बताना चाहता हूं। एक बार मैं अपने कलीसिया के पादरी साहब के साथ एक घर में गया और उस घर के लोग संपन्न लोग थे और हमारे कलीसिया के सदस्य भी थे। जब हम वहां पर बैठे हुए थे, पादरी साहब के सामने एक व्यक्ति थे, एक सज्जन थे। उन्होंने पूछा कि आपका परिचय, तो पादरी साहब ने कहा कि मैं इनकी कलीसिया का पादरी हूं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि क्या आप मसीही लोग हैं? उसने कहा जी हाँ, हम मसीही हैं। तब उसने कहा कि मैं इन्हें वर्षों से जानता हूं, परंतु हमने कभी नहीं जाना कि ये मसीही हैं। मैं उनके साथ बैठ करके उनके वार्तालाप को सुन रहा था, जो बहुत ही दुखद बात थी। कई बार हम अपने आप को दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहते और नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर ऐसा ही कुछ हो रहा है कि लोग हमसे पूछ रहे हैं, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे विचार में योना ने बात को बहुत घुमाया होगा। तब क्या होता है, आइए देखते हैं। योना मछली के पेट में है। योना एक अध्याय के 11 पद में लिखा है, तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। मेरे प्रियो, मेरे विचार में नाविकों को निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी कि योना के साथ हम सब क्या करें। अतः वे योना ही से पूछ बैठते हैं और योना उनसे कहता है, क्या कहता है? योना एक अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिए, योना समझ गया था कि परमेश्वर उसे किसी भी स्थिति में तर्शीश नहीं पहुंचने देगा या नहीं जाने देगा। यही कारण है कि उसने आंधी चलाई। अतः इस समस्या का एक ही समाधान है कि वह उस जहाज से उतार दिया जाए, और उतारा जाए तो कहां, समुद्र में फेंक दिया जाए। योना एक अध्याय के 13 पद में आगे लिखा है, तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे, नाव चलाते रहे, उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। जी हां, वे नाविक योना से अधिक अच्छा विवेक रखते थे। योना को जीवित समुद्र में फेंकने की अपेक्षा उन्होंने यथासंभव प्रयास किया कि जहाज को किनारे पर लगाएं, लेकिन वे असफल रहे। तब हम आगे पढ़ते हैं, योना एक अध्याय के 14 पद में लिखा है, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। उनके जीवन में परिवर्तन को आप देखें, वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं। यद्यपि यह उनकी जान बचाने के लिए था, वे परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं कि उन्हें योना को समुद्र में डालना होगा, अन्य कोई विकल्प था ही नहीं। तब लिखा है योना एक अध्याय के 15 पद में, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। अति स्पष्ट है कि यह घटना अलौकिक थी और परमेश्वर ही ने आंधी चलाई थी। योना एक अध्याय के 16 पद में लिखा है, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, आरंभ है। उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना, उन्होंने अपने देवताओं का भय नहीं माना था। लिखा है, और उसको भेंट चढ़ाई। यह भेंट चढ़ाना प्रभु यीशु की ओर संकेत करता है, क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं है। तब हम देखते हैं कि मन्नतें मानी, उन्होंने क्या मन्नत मानी थी? वे परमेश्वर की सेवा करेंगे। इस अनुग्रह से उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया। अतः योना की उपस्थिति, आंधी और योना के समुद्र में फेंके जाने से कुछ अच्छा ही हुआ। मेरे प्रियो, देखिए योना का अब क्या होता है। योना एक अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया है कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 40 पद में देखते हैं, जहां पर लिखा है, जल जंतु अर्थात एक अति विशाल मछली। परमेश्वर ने योना के लिए एक विशेष मछली की सृष्टि की थी। योना उस महामच्छ अर्थात बड़े मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यहां यह नहीं लिखा है कि योना उस मछली के पेट में जीवित था या मरा। मेरे प्रियो, हमारी रूपरेखा में है कि अध्याय 1 में योना इसराइल से चला, उसका गंतव्य कहां था? निनवे है, परंतु वह मछली के पेट में पहुंच गया। मेरे प्रियो, योना कभी नहीं चाहता था कि अशुरों का उद्धार हो, अतः वह परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर निनवे की अपेक्षा तर्शीस की ओर चल पड़ा, परंतु परमेश्वर ने उसका मार्ग बाधित किया और आंधी के कारण जहाज डूबने लगा। जब नाविकों ने जाना कि योना के कारण परमेश्वर ने ऐसा किया है, तो उन्होंने योना से पूछा कि वे क्या करें। तब योना ने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो तो समुद्र शांत हो जाएगा, परंतु उन्होंने जहाज को किनारे लगाने का प्रयास किया। जब समुद्र शांत ना हुआ तो उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगकर योना को समुद्र में फेंक दिया। तब समुद्र तुरंत थम गया और उन्होंने परमेश्वर का भय माना। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यहां अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम निरंतर आगे बढ़ते हुए अध्याय 2 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 2 का विषय है, योना ने कब प्रार्थना की, योना की प्रार्थना, योना का सूखी भूमि पर आना। मेरे प्रियो, हमारी समय सारणी के अनुसार अध्याय 2 में योना मछली के पेट से बाहर आएगा। उसका गंतव्य निनवे है, तथापि हम मछली के पेट में उसका अनुभव को देखेंगे। तो आइए देखें योना ने प्रार्थना कब की। योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। मछली की पेट में क्या योना मृतक था और परमेश्वर ने उसे जिलाया? यहां लिखा है कि उसने मछली के पेट में प्रार्थना की। मेरे प्रियो, इसका अर्थ है कि वह जीवित था। मेरा प्रश्न यह है, उसने कब प्रार्थना की? उसने देखा कि वह और भी बड़े संकट में है, अतः उसने परमेश्वर को पुकारा। क्या योना ने 3 दिन प्रार्थना तैयार करके 3रे दिन परमेश्वर को पुकारा था? यदि हां, तो मेरी व्याख्या गलत है। परंतु मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है कि योना ने परमेश्वर को पुकारने में विलंब नहीं किया। मेरे प्रियो, मेरे विचार में तो उसने उसी समय प्रार्थना करना आरंभ कर दी थी जब मछली ने उसे मुंह में लिया था, और पेट में पहुंचकर तो उसने आमीन कहा होगा। संकट में आप प्रार्थना तैयार नहीं करते हैं, जो मुंह में आया तुरंत आप पुकार उठते हैं। मेरा एक मित्र सेवा में है जिसकी तर्जनी आधी कटी हुई है। जब उसे पूछा जाता है कि वह सेवा में कैसे आया, तो वह अपनी कटी हुई उंगली हिलाकर कहानी सुनाता है। जब वह बालक था तब उनकी कलीसिया में एक प्रचारक आया। इस बालक के पिता ने पहली शाम उसे सबसे आगे बिठाया, क्योंकि वह कलीसिया का पदाधिकारी था। उसे ऐसा लगा कि प्रचारक उसी से कह रहा है। उसके पिता ने उसे दूसरी शाम भी सभा में भाग लेने पर विवश किया। वह जानता था कि यदि वह तीसरे दिन भी सभा में जाएगा तो वह परमेश्वर की बुलाहट को नहीं ठुकरा पाएगा। अतः उसने अपनी एक कमीज ली और घर से भाग गया। जिस नगर में वह गया था वहां उसे आरा मशीन पर लट्ठे अर्थात लकड़ी काटने की नौकरी मिली। 2 सप्ताह वहां काम करने के पश्चात लकड़ी समाप्त हो गए। उसके पर्यवेक्षक ने उसे पुराने लट्ठे काटने को कहा जो किसी कारण अलग कर दिए गए थे। उनमें एक लट्ठा आधा कटा हुआ था। जब उसने उस लट्ठे को मशीन पर चढ़ाया तो उसका कटा भाग खुल गया और उसकी उंगली उसमें फंस गई। वह चिल्ला रहा था परंतु शोर के कारण कोई उसकी पुकार नहीं सुन पाया। वह अपनी इच्छा के विरुद्ध आरे की ओर खींचा चला जा रहा था। उसकी उंगली और आरे के बीच केवल 45 सेकंड थे और उसने उस 45 सेकंड में प्रभु यीशु को ग्रहण करके सेवा करने का निर्णय लिया। उसकी उंगली कट गई परंतु वह बच गया। मेरे प्रियो, वह कहता है कि उसने उन 45 सेकंडों में परमेश्वर से जितनी बात की थी तब से आज तक उतनी बात उसने परमेश्वर से कभी नहीं की थी। कहने का अर्थ है कि वह आज तक वैसा बात परमेश्वर से नहीं कर पाया है। आप जब संकट में होते हैं तो अधिक परमेश्वर से बातचीत करते हैं और उससे अधिक प्रार्थना और निवेदन करते हैं। मेरे प्रियो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब विपत्ति जीवन में आती है तो सबसे पहले हम अपने माता पिता, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, या इसलिए कि हम उनके द्वारा से सहायता प्राप्त करें। जब असंभव हो जाता है, डॉक्टर हमें जवाब दे देते हैं, तब हम क्या करते हैं? अपने परमेश्वर को पुकारना आरंभ करते हैं। मेरे प्रियो, आप संकट काल में प्रार्थना को टालते नहीं हैं, और योना ने भी ऐसा ही किया। मेरे विचार में उसने यहां व्यक्त शब्दों से अधिक बहुत कुछ कहा होगा। मछली के पेट में पहुंचते पहुंचते तो उसकी प्रार्थना भी पूरी हो गई होगी। टीकाकार प्रायः शब्द तब को लेकर के बल देते हैं कि योना ने मछली के पेट में पहुंचकर प्रार्थना की, परंतु इब्रानी भाषा में तब शब्द का प्रयोग करती है तो उसका अर्थ है कि संपूर्ण विवरण सुना दिया गया है, जैसा उत्पत्ति में सृजन कार्य के समय लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन सब कुछ रचा, तदोपरांत उसने मनुष्य की रचना की। अर्थात उसका महत्वपूर्ण काम मानव रचना था। अतः यहां तब शब्द से आशय यह है कि योना प्रार्थना कर चुका है और अब वह हमें मछली के पेट में उसके अनुभव को सुनाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज आप अपने जीवन में जब संकट का सामना करते हैं तब आप क्या करते हैं? क्या आप परमेश्वर के सम्मुख आकर के प्रार्थना करते हैं, या किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए किसी को भेजते हैं, या आप स्वयं से ही कुछ उपाय ढूंढते हैं? परंतु मैं जानता हूं, जब मैं अपने कॉलेज अवस्था में था और एक नदी में बाढ़ आई हुई थी और मेरे दोस्त उसमें तैर रहे थे, मैं भी कूद पड़ा। परंतु जब मैं बीच नदी पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि आगे और पीछे बहुत दूरियां हैं और मैं बिल्कुल थक चुका था। मैं प्यास से तड़प रहा था जबकि मैं नदी में था। मैं उसे पी नहीं सकता था उस पानी को, क्योंकि नदी का पानी गंदा था और मुझे लगा कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगा। और मैं बड़े साहस के साथ फिर से तैरना आरंभ किया और किनारे पहुंचने से पहले मैंने महसूस किया कि अब मैं नहीं बचूंगा, और मैंने अपने मित्रों को पुकारा, मुझे बचाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और तब मेरे मित्र कहने लगे कि तुम डरो मत, तुम बच जाओगे, नीचे से तुम ऊपर आ जाओ। और मैं नीचे बहता चला जा रहा था और मन में मैंने कहा, हे प्रभु मुझे बचा नहीं तो मैं मर गया। और परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुना और फिर से मुझे बल मिला, बाहर निकला और तैरते हुए मैं किनारे तक आया। बहुत मुश्किल से मैं नदी को पार कर पाया। आज भी मैं उस दिन को याद करता हूं कि परमेश्वर ने मेरी इस प्रार्थना को, जो संकट काल में मैं था, उसने सुनी, और आज मैं उसके कारण जीवित हूं और उसकी सेवा में बना हूं। मेरे प्रियो, आप संकट के समय में किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? क्या आप उसके निकट आते हैं या कुछ और सोचते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप उसे पुकारें और वह आपको थामने के लिए तैयार है। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मुझको बना।